अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कामयाब हों, तो वो पत्थर, वो तनकीदों के पत्थर जो लोग आपकी तरफ फेंकते हैं, उन्हीं से अपनी इमारत खड़ी करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी कि अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं जब उनको कोई शख्स कोई बात कहता है कि जी आपने ये कर लिया, फलां हो, आपका ये मसला है। इन ये सारे तनकीद के पत्थर हैं, और कामयाब शख्स वही है जो इन तनकीद के पत्थरों से परेशान नहीं होता, बल्कि इन तनकीद के पत्थरों को इस्तेमाल करता है और एक बहुत खूबसूरत सी बड़ी सी इमारत बनाता है। तो आइए आज से हम लोग भी अहद करें कि जो कोई हमारे पे तनकीद करेगा या हमें बोलता है कि आपका ये काम सही नहीं है, ये काम गलत है, ये काम ऐसा है, बजाय इसके कि हम परेशान हों, बजाय इसके कि हम जो है बिल्कुल ये कहने लग जाएं कि हम नहीं कर सकते या हमारे में ये खामी है, इत्तफाकन इन्हीं ही तनकीद जो तनकीदें आपकी तरफ फेंकी जाती हैं, आपके साथ ये बातें जो आपके दोस्त या आपके कलीग वगैरह करते हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करें और आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने भी कहा है कि जो हवा जो चलती है ये आपको ऊंचा उड़ाने के लिए चलती है। तो ये जो परेशानियां हैं ये इत्तफाकन इसलिए आती हैं, ये जो तनकीद है ये इसलिए आती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बन सकें। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत आपको खुश आमदीद, तेहरान स्टूडियो में आपको खुश आमदीद, और एक खूबसूरत से गर्मा गर्म प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। और क्या कहूँ, आप बताएं
जी। मैं कहती हूँ पहले मैं सलाम अर्ज़ करती हूँ अपने
जी।
प्यारे प्यारे और अज़ीज़ नाज़रीन की खिदमत में। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह प्यारी सी सुबह का आगाज़ हमारे और आपके अपने प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी के साथ कर चुके होंगे। जी खुर्रम,
प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी को क्या चीज़ स्पेशल बनाती है ये जो है आज मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा, और वो
बिल्कुल
ये है कि आप लोगों की शराकत, आप लोगों का प्रोग्राम में शामिल होना, और आप लोगों के ही कहने पे हमारे मौजू जो सिलेक्ट होते हैं वो
बिल्कुल
आप लोगों के कहने पे होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप शरीक होंगे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में, उतना ही प्रोग्राम मज़ा आएगा। जैसे वो कहते हैं ना, जितना जो है शक्कर डालोगा उतना जो है वो मीठा हो जाता है।
बिल्कुल।
क्या मीठा होता है? हलवा मीठा होता है या शरबत, बहरहाल
अब जो भी आपको मीठा पसंद है
जो
वो
भी जो
मीठा
भी
कहना
मीठा
चाहें।
पसंद है
हाँ,
आपको।
जिस तरह हम हमेशा से नाज़रीन कहते हैं कि आपके बिना हमारा प्रोग्राम कुछ अधूरा अधूरा सा, कुछ फीका सा, बेरंग सा पड़ता है, तो ज़रूर शिरकत करें, हमारे प्रोग्राम में रंग डालें, क्योंकि आपके दम से ही हमारे प्रोग्राम में जान बनती है।
बिल्कुल, हम लोग झूठ बोल नहीं बोलते। इसकी
बिल्कुल
वजह यह है कि हमारे हफ्ते का मौजू जो है वो भी यही है कि झूठ से कैसे छुटकारा पाया
नहीं
जाए। अलबत्त अगर आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमारी मदद करें कि कैसे हम लोग भी जो है इस बुरी आदत से
ये
बच
जान छुड़ा
सकते
सकें।
हैं।
बिल्कुल
और इत्तफाकन इत्तफाकन कल मैं सोच रहा था इस बात पे कि कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो शौकिया झूठ बोलने के आदी होते हैं। भाई ये क्या बात है शौकिया झूठ
अच्छा,
बोलना?
शौकिया झूठ बोलने के आदी, और खुर्रम ये होता है कि मेरे ख्याल से शो ऑफ करने के बहुत आदी होते हैं।
ठीक,
ठीक है, तो वो
हाँ
शो ऑफ,
ये बड़ा अच्छा नुक्ता
सॉरी,
आपने उठा
तो ये
दिया
शो
है।
ऑफ के चक्कर में, या मेरे पास तो
ओर
फलानी
ओर
गाड़ी है और
ये
मैं तो इस तरह हूँ।
बिल्कुल,
बिल्कुल,
ये
और वो झूठ
सुबह
होता है।
ये बड़ी जो है बड़ा अहम नुक्ता आपने उठा
बिल्कुल
दिया है कि एहसास से कमतरी का जो
बिल्कुल
एहसास है लोगों के अंदर, उसकी बुनियाद पे लोग जो है
झूठ
हम
बोलना
लोग
शुरू
जो है
करते
झूठ
हैं।
बोले जाले चले जाते हैं वो। अच्छा भाई, अब अगर आपने जो है अगर ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जिनका कोई मशहूर कंपनी के नहीं है, तो क्या
बिल्कुल
हुआ? कपड़े जो हैं वो
ठीक,
बदन को छुपाने के लिए हैं,
बिल्कुल
और अगर आपने सही तरीके से उस बदन को छुपाया हुआ है, इस्लामी तरीके से बदन को छुपाया हुआ
बिल्कुल
है, तो मेरे ख्याल में आप अगर जो है आपके घर घर का बना हुआ कपड़ा हो
बिल्कुल
या वो बेहतरीन कंपनी जो है दुनिया की उसका कपड़ा हो, मुझे तो नहीं
बिल्कुल
लगता इसमें
एक
कोई फर्क
ऐसी
है। कोई
चीज़ हो
फर्क है?
जिसमें
कोई
आप बिल्कुल इजी रहें, एक ऐसी
जी
चीज़ हो जिसमें आप
बिल्कुल
बिल्कुल अपनी हरकत, जो काम आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल इजीली तौर पर कर सके। क्या फ़ायदा, आपने एक बहुत मशहूर ब्रांड का कपड़ा ले लिया
और
और
आप
आप उसमें यूं
इजी
तंग
नहीं।
होकर बैठे हुए, तंग है आपको बहुत, या उसका स्टाइल कुछ इस तरह है कि आप उसमें ईजी नहीं, तो फ़ायदा क्या? तो
बिल्कुल
बेहतर आप घर के बने हुए कपड़े पहनो। और क्या बात है झूठ बोलने की,
बिल्कुल
कपड़े
झूठ
तो कपड़े हैं, मोबाइल तो मोबाइल है। आप देखिए अभी वो
बेशक
सब ये बोलते हैं, सिस्टम आ गया है टेक्नोलॉजी का है, तो बोलते हैं टच सिस्टम होना चाहिए सबके पास, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मोबाइल जो पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट जो पेज वाला था, वो
जी,
भी
वो
कॉल कर रहा है, वो भी SMS दे रहा है।
कैलकुलेटर के सफे पेज
बिल्कुल
वाला जिसको
बिल्कुल
कैलकुलेटर का
बिल्कुल, तो वो भी वही
सफा
काम कर रहा है जो आजकल के टच कर रहे हैं, तो
बिल्कुल
कोई फर्क ही नहीं है।
इत्तफाकन रुबाब, एक चीज़ आपको मैं बड़ी दिलचस्प बताऊं। मैं
जी
ये नहीं कहता कि जिनके पास टच मोबाइल हैं या जिनके पास बड़े महंगे किस्म के मोबाइल
बिल्कुल
हैं उन लोगों के साथ कोई मसला है
ठीक
या वो
है
अच्छे नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि आप जितनी भी अपने आसपास
ठीक
जितने
है
भी मेच्योर और जो सीरियस संजीदा किस्म के लोग हैं, उनको देखेंगे उनके पास वही नॉर्मल से मोबाइल होते हैं। कोई
सही
उनको वो जो है वो जरूरत नहीं होती। अब उसमें ये कह देना कि जी अक्सर लोग ये कह देते हैं कि जी इनको इस्तेमाल करना नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा है और बड़ी बड़ी पोस्टों पे इंजीनियर्स डॉक्टर्स को देखा है, वो कहना भाई यार हमें हम मोबाइल को मोबाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा खुर्रम, आपके इस बात पर मुझे एक बात याद आया, फेसबुक पर कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले एक पोस्ट आया था, उस पोस्ट में यही था कि एक टच मोबाइल था और बाकी वो ब्लैक एंड वाइट सफ़े के पुराने मोबाइल थे, तो बोला था कि ये इम्कान ही नहीं है इस बात का कि जिसके पास टच मोबाइल है उसके पास ये मोबाइल ना हो। आपने देखा होगा एक जेब में टच होता है तो एक जेब में वो होता है,
क्योंकि वो उसको SMS लिखना या उस पर काम करना जो है वो सादे मोबाइल में बहुत आसान है।
और खुदा ना खासा नाजरीन को ये कभी ना हो कि हम ये कह रहे हैं कि जिनके पास टच मोबाइल है वो मतलब सही नहीं है। देखिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी जेब में इतना है कि आप वो मोबाइल खरीद सकते हैं तो शौक से लीजिए, आपका शौक है, आपकी चीज है। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं जो लोग नहीं ले सकते और उस बारे में एहसास कमतरी का शिकार होकर फिर झूठ बोलते हैं, बात यानी मौजू ये है कि कहीं कोई गलत फहमी ना हो जाए। और खुर्रम मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रही थी और बहुत जबरदस्त आर्टिकल था, उसमें लिखा था कि कभी झूठ बोलने वाले से ये मत पूछो कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो उस झूठ को छुपाने के लिए तुमसे फिर एक और झूठ बोलेगा।
जी ये भी बड़ी अच्छी बात की है, बिल्कुल झूठ जब आप शुरू कर देते हैं तो फिर झूठ चलते रहते हैं, फिर झूठों को रोका नहीं जा सकता। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि झूठ पहली बार ही ना बोला जाए,
बिल्कुल,
और अगर बोल चुके हैं तो अब अगली बार ना बोला जाए। सही बात। हमारे पास जो है, हम लोग सैर करने जा रहे हैं कि एक खूबसूरत से शहर की, मेरे ख्याल में जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे बताया गया है कि इस्फहान की सैर की जा रही है। बिल्कुल
हमेशा की तरह इस्फहान निस्फ जहान आधी दुनिया, जैसे हमारे यहाँ लाहौर है कि इसने जैसे लाहौर को नहीं देखा। कहते
खुशामदीद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में, और आप लोगों ने खूबसूरत सा शहर इस्फहान उसकी सैर की, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बहरहाल वक्त हुआ है हमारे गुफ्तगू के सेगमेंट का, हमारे मेहमान जो हैं वो पहुंच चुकी हैं, फरहत बंदी साहिबा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वकील हैं और समाजी मुश्किलात की माहिर हैं। तो चलते हैं रुबाब की तरफ और देखते हैं रुबाब जो है उनसे आज क्या सवालात पूछेंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है आज जो हमारा दिन है वो इस चीज़ का दिन है कि इस पर हम बात करते हैं, हमारा हफ्ते के मौजू के ऊपर बात करते हैं, उसको कुछ नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं। तो आज जो है मिल बैठ के आप लोग, हम लोग और फरहत बंदी साहिबा हमारी मदद करेंगी ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंच सकें कि कैसे झूठ से छुटकारा पाया जाए। जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया खुर्रम। मैं नाजुन के पता चलूंगी कि अगर आप टूरिस्ट हैं तो इस्फहान ज़रूर जाएँ, वहाँ की तारीखी इमारतों का जो सैर है थोड़ा सैर सपाटा कीजिए और वहाँ की एक मशहूर मिठाई गस वो ज़रूर खाइए ताकि कुछ मीठी मीठी बातें हो सकें।
जो पाकिस्तानी और हिंदुस्तान से जो लोग आते हैं उनको गस जो है बहुत पसंद है।
बिल्कुल, और चूंकि वो काफ़ी यहाँ की मशहूर मिठाई है और बहुत अच्छा टेस्ट है उसका।
नहीं मसलन हर ईरान में हर शहर जो है उसकी अपनी मशहूर मिठाई है, लेकिन गस जो है वो खास तौर पर पसंद आती है, शायद मेरे ख्याल से क्योंकि बहुत मीठी नहीं होती
और उसके अंदर ड्राई फ्रूट जो होता है पिस्ता, तो शायद उस वजह से भी इसका वो है। खैर तो कुछ मीठी मीठी बातें हो गई, चलते हैं अपने मोहतरम मेहमान की तरफ, मोहतरमा फरहत बंदी साहिबा, और आज इनसे जो हमारा हफ्ते भर का मौजू है थोड़ा खुलासा देखते हैं क्या नतीजा निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ
जी,
और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे दावत दी,
बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएं। फरहत साहिबा, पहला सवाल तो मेरा यही है, हमने मौजू रखा है कि बुरी जो आदतें हैं उनसे जान छुड़ाना, तो कहते हैं कि बुरी आदत का जो पहला जो स्टेप होता है या पहला कदम वो झूठ से ही होता है, तो फिर इस बारे में आप बताएं हम क्या, आपकी राय क्या है, किस हद तक सही है ये बात?
जी देखिए, पहले हमको ये देखना चाहिए कि हम झूठ किस लिए बोल रहे हैं।
ठीक,
हमारी ज़रूरतें अपनी ज़रूरतों के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या कोई और वजह है।
ठीक,
तो ये तो सभी जानते हैं कि झूठ बोलना गुनाह है।
सही,
मज़हब में भी है, दीन में भी है और बुरी आदत भी है।
सही,
लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि झूठ से किसी को नुकसान ना पहुंचे। झूठ के बहुत सारे किस्में हैं।
ठीक,
कि लेकिन अगर एक चीज़ है कि आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन किसी को ज़बरदस्ती जानबूझ के किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो बहुत गुनाह है ये।
ठीक,
अब आप झूठ एक बार बोल रहे हो, किसी एक झूठ को छुपाने के लिए आपको दूसरा झूठ ज़रूरी बोलना है।
सही,
तो अगर आप दूसरा झूठ नहीं बोलोगे वो आपका पहला झूठ नहीं छुपेगा।
बिल्कुल,
झूठ पे झूठ जब बोलते जा रहे हो तो उसके बाद ये एक आदत बन जाती है इंसान की।
ठीक है,
फिर उसके बाद ये जब एक आदत सी बन जाती है फिर इसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
बिल्कुल,
ये बिल्कुल एक खून में मिक्स हो जाता है कि जब तक आप झूठ ना बोलोगे तब तक वो बात ख़त्म ही नहीं होगी,
सुकून नहीं मिलेगा अंदर से
जी।
आपको बिल्कुल
जी।
तो फरहत साहिबा, ये तो ठीक है, आपने अच्छी तरह बताया कि झूठ क्यों हम बोल रहे हैं, किस बारे में, किस तरह आपकी ख्याल में एक बंदा अपना जान छुड़ा सकता है झूठ बोलने से या परहेज़ कर सकता है झूठ बोलने से आपके ख्याल में?
जी सबसे पहले तो हम अगर देखा जाए जो छोटा बच्चा जो होता है वो घर से उसकी जो परवरिश जो होती है स्टार्ट में वो शुरू में घर से शुरू होती है।
ठीक है,
वो बच्चा देखता है मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन अगर उसके कोई बड़े होंगे, वो
जी
करते क्या है, वो उनको
बिल्कुल
कॉपी करता है,
बिल्कुल
उनकी नकल करता है।
बिल्कुल
तो देखता है कि मसलन मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल दूंगी कि अक्सर जो शरारती बच्चे होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं
बिल्कुल
या होमवर्क नहीं करते हैं, स्कूल का कोई काम होता है वो नहीं करते हैं,
बिल्कुल
तो उनको कहते हैं कि चलो बेटा ये काम कर लो तो हम आपको चॉकलेट देंगे,
बिल्कुल,
या कोई ये काम कर लो, ये खाना खा लो तो हम आपको कुछ और चीज़
ये
दिलाते
आपको
हैं।
बाहर की सैर कराएंगे, पार्क ले जाएंगे, सर की
जी
भाने जो माए
जी कहीं
बनाती है
बाहर
अक्सर।
ले जाते हैं।
बिल्कुल
तो वो ये इस बहाने के ज़रिए से अपना काम तो कर लेता है,
बिल्कुल
लेकिन वो ये बाद में ये सीख लेता है कि
जी
वो जब देखता है कि मेरे माँ बाप या भाई बहन जो भी हों, उन्होंने ये काम तो मुझे मुझसे करवाया, लेकिन
बिल्कुल
खुद जो कहा था उन्होंने वो नहीं किया,
ठीक है
फिर वो खुद कोशिश करने लगता है कि चलो मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ।
अच्छा
तो फिर उसकी ये स्टार्ट जो बिल्कुल बेसिक जो है स्टार्ट, वो स्टार्ट मतलब काम मतलब
जी
बोलने
ठीक
लगता है,
है,
झूठ बोलने लगता है,
जो चीज़
चलो
सीख
मैं
रहा है
ट्राई
ठीक है
करता हूँ, आज मैं ऐसे बोलता हूँ, एक
सही
झूठ छोटा सा झूठ बोलता हूँ, वो
ठीक है
एक छोटे से झूठ से शुरू करके वो बहुत बड़े झूठ तक पहुँच जाता
ठीक
है।
है। और फिर बचपन से ये बच्चे के अंदर आदत सी बन जाती है, क्योंकि बच्चा
जी
बचपन में जो है हमेशा, हम यही बात कहते हैं नाज़रीन, बच्चा जो हमेशा है वो माँ बाप से सीख रहा है, माँ बाप की हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि अच्छी रफ्तार से बच्चों के सामने झूठ ना बोला जाए। झूठ के अलावा भी और बहुत बुरी आदतें हैं, अब ऊंची आवाज़ में बात करना जो है बच्चों को ये सिखाता है कि जो बड़े या छोटे का जो एहतराम है बच्चे
जी
हमसे ही सीखते हैं, तो इस बात का खास खास नाज़रीन हमको ख्याल रखना चाहिए।
खास तौर पे जब
जी
बच्चे होंगे, जहाँ पे बच्चे होंगे, क्योंकि
बिल्कुल
वो उनकी जो उनका माइंड जो होता है वो बहुत शार्प होता है,
बिल्कुल
तो क्योंकि इनिशियल स्टेट में मतलब बिल्कुल उसकी जो शुरुआत होती है
इब्तदाई
अभी
मराइल में होते हैं।
सीखने वाली होती है ज़िंदगी, तो वो देखता है कि चलो अगर फॉर मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल दूंगी कि कोई सिगरेट पीता है,
जी
तो बच्चा देखता है फिर वो कोशिश करता है, मैं मतलब हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि हम भी वो करें,
अपने बड़े से जो होते हैं उनकी कॉपी करने की बहुत कोशिश करते हैं।
कोशिश
बिल्कुल
करते हैं, तो कहते हैं हम भी देखेंगे ये कैसा होता है।
ठीक है बिल्कुल
तो वो उस जब छोटा एक छोटा बच्चा बड़े को देखता है ये सिगरेट पीता है, स्मोकिंग कर रहा है, देखेंगे हम भी, हम ये टेस्ट करेंगे, हम देखेंगे कि हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा,
बिल्कुल
तो वो शुरू हो जाता है उसके घर से।
बिल्कुल
फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा होने लगता है, उसे बाहर स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है,
बिल्कुल
तो उसके बाद फिर दोस्तों के साथ ग्रुप में होता है,
बिल्कुल
तो वहाँ पे एक अलग सा उसका माहौल होता है, घर में अलग सा माहौल होता है।
बिल्कुल
अब अगर देखेंगे कि बच्चा किस माहौल में पढ़ा, फिर उसके बाद स्कूल बाहर की ज़िंदगी,
बिल्कुल
तो दोस्तों का एक ग्रुप का जो बहुत असर पड़ता है एक बच्चे के ऊपर,
जी बिल्कुल
तो वो किस ग्रुप में है, किस
ठीक है
बच्चे के साथ उसका उठना बैठना है,
बिल्कुल
या टीचर हैं
जी
उस्ताद हैं,
जी
तो इस तरह से ये बच्चे सीख जाते
जी
हैं।
पर साहब आप इतने बहुत अच्छी तरह इशारा किया उस्ताद के बारे में, क्योंकि
जी
बच्चा घर की बात या माँ की गोद की बात से जब निकलता है तो पहली बार जो वो माशरे में इंटरेक्ट करता है या माशरे से मिलता है वो स्कूल होता है इसका।
जी
तो असातिज़ा का क्या किरदार हो सकता है कि बच्चों के जहन में इस बुरी आदत को, अब वो झूठ हो गई या कोई भी और भी बुरी आदत,
जी
उसको निकाल सके या बच्चा अपनी बात बेधड़क जो है वो उस्ताद से बोल सके, बेखौफ बोल सके, तो
जी
आपका क्या ख्याल है असातिज़ा का क्या किरदार है?
जी इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है,
जी
जिम्मेवारी कहेंगे, ये टीचर्स की है, उस्ताद की है,
जी
क्योंकि बच्चा तो घर से चला जाता है स्कूल,
ठीक
पूरा
है
दिन स्कूल में गुजारता है,
जी
तो ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है ये टीचर्स की है,
जी
कि बच्चे छोटे होते हैं अभी, सीखने वाले होते हैं,
बिल्कुल
जो उनको सिखाएंगे वो सीख लेंगे।
सही
अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शर्मीले होते हैं,
बिल्कुल
वो एक्सप्रेस नहीं करते, जाहिर नहीं कर सकते,
ठीक है
बोल नहीं पाते हैं,
सही
तो टीचर्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये बच्चा चुप है, खामोश है या शाय है, उसको बाहर निकालने की,
इनकरेज करें
उसको और ज़्यादा इनक्रेज
ठीक
करें,
है ठीक है
उनके साथ बात करें। लेकिन आप लोग, आपने देखा होगा कि टीचर्स आजकल जो है बच्चे के दिल में बहुत डर खौफ पैदा करते हैं।
बिल्कुल। और सर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, मिसाल के तौर पे कोई मसला हो गया, वो हो या
जी
होमवर्क नहीं किया या उसका दिल नहीं चाह रहा, तो ये होता है कि बोलता है टीचर मेरी अम्मी बीमार थी, मैं बीमार था,
जी
तो वो उधर से ही झूठ के बहाने बनाना शुरू कर
शुरू
देता है।
करता है,
बिल्कुल
तो अब टीचर तो ये कहता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया कल आपको मार पीटेगी
बिल्कुल
या आपको क्लास से बाहर रखा जाएगा,
सही
तो वो जब दूसरे दिन घर आता है, स्कूल आता है, अगर होमवर्क पूरा उसका नहीं हुआ होगा
ठीक है,
तो वो झूठ बोलना स्टार्ट करता
उस
है।
मार के खौफ से झूठ बोलना शुरू करता है।
बिल्कुल
ठीक है ठीक है।
जी
तो यहाँ पे आपका ये कहने का मतलब है कि मार धाड़ बच्चों के लिए
नहीं होना चाहिए,
स्कूल में
क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप बच्चे को मारते हैं
ठीक है,
तो उसका एक तरह से जो है उसका दिल उठ जाता है, नफरत सी पैदा होती है उसके दिल में कि अगर मैं जाऊं मुझे दोबारा टीचर डांटेगी या
सही
मारेगी।
सही
और ख़ास तौर पे टीचर को ये ख्याल रखना चाहिए, जब भी किसी भी बच्चे को नसीहत करनी हो
सही
तो तन्हाई में नसीहत करें,
जी
क्योंकि हमारे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का भी ये कौल है कि जब भी किसी को नसीहत करनी होगी
ठीक है
तो उसे तन्हाई में नसीहत
बिल्कुल।
करनी
यानी
चाहिए।
औरों के सामने अब उनकी अगर उसमें कोई ज़र्फ़ है या कोई कमज़ोरी है तो औरों के सामने इस बात का इशारा ना किया जाए ताकि वो
जी,
शर्मिंदगी का
ताकि
एहसास।
वो शर्मिंदगी का एहसास
जी
करें। बिल्कुल
जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा फारत बंदी साहिबा, बहुत ही खूबसूरत बात से आपने यहाँ तक मौजू को पहुँचाया कि हम किस तरह अपने ज़र्फ़ या जो किसी में कोई नुकसान होते हैं हम यानी उसको किसी के सामने बयान ना करें ताकि किसी को शर्मिंदगी का एहसास ना हो। नाज़रीन यहाँ हमें चलना है खुर्रम के पास और देखते हैं कि खुर्रम को हमें कहाँ लेके जाना। जी खुर्रम
जी, मैं आपको जो है सैर करवाने जा रहा हूँ। अपने हमारे जो प्रोग्राम के फ़ोन नंबर हैं, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट
सही,
है, उसकी सैर करेंगे
यानी
हम
हम
लोग।
कहीं सैर सपाटे पे नहीं जा रहे।
नहीं, हम सैर भी जा रहे हैं, ये भी एक
अच्छा
सैर होती है, दूसरे तरीके की सैर है, तो इसको भी जो है इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से हमारे नाज़रीन हमारे प्रोग्राम तक पहुँच सकते हैं
बिल्कुल
और फिर जो है आपको पता है फिर बहुत मज़ा आएगा। उनके मुख्तलिफ़ कमेंट्स हैं, उनकी
बिल्कुल
बातें हैं, उनके सवाल आते हैं,
और उनकी
तो
शिरकत को जान सी भर देगी प्रोग्राम में
बिल्कुल। तो
बिल्कुल।
चलते हैं, वक्फा लेते हैं और उसमें देखते हैं कैसे आप हमारे प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देख लिया कैसे कैसे आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है और मैं चाहूँगा कि इस सवाल को आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाए, जो भी जवाब दे सके, और
जी
आखिर में खैर बहरहाल फ़राज़
अच्छा जो
बंदी
भी
साहब
जवाब
ऐसे
दे
जवाब
सके
लेंगे
तो उसका प्राइस क्या है।
जी, पैसे देने पड़ेंगे
जी
यहाँ जवाब लेने के। सवाल सवाल ऐसा सवाल है जो हमारे नाज़रीन का भी होगा, इस
अच्छा
वजह से मैं
ठीक
ये
है फिर
सवाल
मैं समझी
पूछ रहा हूँ।
कोई वो कुरान
जी
नाजी वाला सवाल
नहीं,
है।
कोई कुरानंदाजी वाला सवाल नहीं, हफ्ते के
सही
मौजू पर सवाल है मेरा ये कुरानंदाजी। मुझे लगता है आप वो उन लोगों में से जो हैं वो बेचारे डेली जो सुबह उठते हैं ऑफिस जा रहे होते हैं तो वो एक टिकट खरीदते हैं ना, वो नंबर
बिल्कुल
वन लकी ड्रॉ वाली।
सही
बहरहाल ये बातें जो हैं बाद में करेंगे हम लोग,
ठीक
लेकिन
है
सवाल जो मेरा था वो ये था कि हम चंद दिन पहले बात करते इस पर कि इंसान जितना भी झूठ बोल ले, इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। आप जितना भी दूसरों को जो है बेवकूफ़ बना लो, लेकिन आप खुद अपने दिल में पता है आपको कि यार आप जो है गलत काम कर रहे हो, और आप कब तक आप अपने आप से झूठ बोलोगे।
बिल्कुल
मिसाल वही बात जो आप कहते हैं जी मैंने जो घड़ी पहनी हुई है ये जो है 1 लाख रुपए की, आपको पता है 1,000 रुपए की है, तो ये
चाइना की
खुद
सेकंड कॉपी है
हाँ
ये बोल
चाइना
रहे
चले चाइना के जो थर्ड मॉडल जो आता है
अच्छा
वो है। चलो अब
सही
बात है, चाइना को ख़राब ना करें, क्योंकि चाइना जो है वो टॉप क्लास चीज़ें भी बनाता है और सस्ती
सही
चीज़ें भी बनाता है। अब वो और बहुत है कि आप लोग खुद जो है वो चाइना की सस्ती चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें बेचारे चाइना का क्यों। अच्छा बहरहाल ज़्यादा बात
सही
नहीं हम
ठीक
करेंगे,
है
डायरेक्टर साहब जो है मुझे घूर रही
ठीक है
हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह इंसान की अपनी शख्सियत टूट नहीं जाती, इंसान की
बिल्कुल
अपनी शक, इंसान अपनी नज़रों में गिर नहीं जाता कि भाई मैं हर किसी को तो बोल रहा हूँ ये 1 लाख की, लेकिन मुझे तो पता है ना 1,000 की।
सही। तो इस सवाल का मैं जवाब लेती हूँ जी फरहत
जी
साहिबा, जिस तरह खुर्रम ने बताया कि इंसान अपने आप से किस तरह झूठ बोल सकता है या अपने दिल को किस तरह बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या ये आपका क्या ख्याल है इस बारे
देखिए,
में।
ऐसा है कि आजकल आप देख रहे हैं कि दिखावा कितना बढ़ चुका है।
बिल्कुल
जी, अब मैं आपको दिखाने के लिए, आपसे और ज़्यादा आगे बढ़कर दिखाने के लिए दो लोगों को कि नहीं मैं इनसे बढ़ के हूँ,
जी
तो आपने एक ब्रांड के कपड़े पहने हैं,
ठीक
मुझे
है
दिखाना है।
ठीक है
मुझे ये एक किस्म की आप मानिए एक बीमारी है,
अच्छा
ये माइंड में जो दिमाग में इंसान के बन जाती है
बिल्कुल
रेज, जिसको ये हो जाती है, बस हो ही
बिल्कुल
जाती है।
सही है
अब एक चीज़ है कि वो उससे कैसे परहेज़ करें,
बिल्कुल
ये खुद इंसान पे डिपेंड करता है
ठीक है
कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आज मैंने झूठ बोला कि ये चीज़ मेरे, आज मैंने इतने की ये चीज़ खरीदी है,
ठीक है
तो कल मुझे वो मुझे दिखाना है आपको, क्योंकि दिखावा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आजकल,
बिल्कुल
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
मिल गया, और एक कंपटीशन वजह बन रही है झूठ बोलने की तरह
जी
से बिल्कुल
अब इंसान अगर इस खुद की इंसान अगर ये सोचे कि मैं ये झूठ क्यों बोल रहा हूँ,
ठीक है
मुझे इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है,
ठीक
तो खुशामद मिल रही है कि लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं,
सही
ज़्यादा से ज़्यादा और क्या हो सकता है।
बिल्कुल
आज आप मेरी तारीफ़ करेंगे, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, आपने बहुत अच्छी घड़ी पहनी है, आपने बहुत अच्छे जूते पहने हैं, कल क्या होगा।
बिल्कुल और उस
तो
खुशामद
ये
से क्या मिलने वाला है।
जी जी बिल्कुल, देखिए ये एक ये जो झूठ है ये एक बुनियादी जड़ है
सही
गुनाहों का।
ठीक है
तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम
जी
कहते हैं कि आप कोई इंसान, कोई भी इंसान, कोई बहुत ज़्यादा नमाजी हो,
जी
परहेजगार हो,
जी
वो उनके जो सजदे हैं, लंबे लंबे सजदे हों, रुकू हों, बहुत ज़्यादा परहेजगार हों, उनके लंबे लंबे सजदे और रुकू पे ना जाओ, ये देखो कि वो कितना सच कहता है, ये देखो कि वो कितना झूठ से परहेज करता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, हमारे इमाम ये के फरमा रहे हैं कि उनके सजदों पे नहीं जाओ, उनकी इबादत पे ना जाओ, ये देखो कि वो कितना सच कहता है। तो इंसान खुद अपने दिल में अगर ये तय कर ले, अब अगर उसकी ज़मीर जो है वो उसको ये इजाज़त ना दे, तो सही में एक मोमिन ही ऐसा कर सकता है कि झूठ बोलने से नहीं, खुदा देख रहा है, चाहे मैं आज कितना छुपाऊँ, कल, परसों, उसके बाद, लेकिन फिर भी खुदा तो देख रहा है, कोई भी ना देख रहा हो लेकिन खुदा तो देख रहा है, मुझे जवाब तो देना है इसका।
और यही बात का खौफ अगर दिल में बैठ जाए तो इंसान,
अगर यही छोटे बच्चों को भी अगर ये कहा जाए,
बिल्कुल
बच्चों को भी, बिल्कुल देखो आप झूठ नहीं कहना, क्योंकि ये नहीं कि आपको मारेंगे या कुछ और करेंगे, पीटेंगे, नहीं, आप झूठ बोलोगे खुदा देख रहा है, आपको बहुत बहुत नाराज हो जाएंगे, मतलब इस तरह से। या इंसान अगर मेच्योर इंसान है, वो ये सोचे, अगर वो सही में बिल्कुल होशमंद है, अक्लमंद है, वो अपनी अकल से काम ले रहा है। आजकल आप देखते हैं कितना ज़माना बहुत तेज़ी से चल रहा है, इंटरनेट पे सब कुछ है आजकल, तो ज़रूरी नहीं है कोई और चीज़ें देखे, कोई गैर कानूनी या कोई और चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि ठीक ना हो।
जी जी,
बहुत सारी मजहबी चीज़ें हैं, मजहब के रिलेटेड हैं, तो वो ये देख सकता है, तो देख सकता है कि हमारे इमामों ने मतलब इन गिराहों के बारे में हमें कितनी परहेज करने के लिए हमें कितना कहा गया है,
जी
बहुत ताकीद की गई।
बहुत शुक्रिया फारहत साहिबा, और बहुत ही खूबसूरत बात की तरफ आपने इशारा किया कि अगर हम अपने दीन ही की तरफ किस तरह रुजू करें अपने दीन से, तो बहुत सी बीमारियों की जो मुश्किल, जो बीमारियाँ मैं कह रही हूँ, बहुत सी बुराइयाँ जो हैं, हम उनसे किसी हद तक ज़रूर बच सकते हैं।
जी
खुर्रम
जी, हमने जाना है थोड़ा सा, अभी है जो है वाकई हम सैर सपाटे पर जा रहे हैं और चलते हैं, थोड़ी सी ठंडी हवा बाहर से खाते हैं और झूठ की जो हवा है उससे थोड़ा सा बाहर आते हैं। बेशक हम यही कह रहे हैं कि झूठ ना बोलें, लेकिन ये कि थोड़ा सा बहस से बाहर आते हैं, तो चलते हैं, थोड़ा सा वक्फा लेते हैं। जी नाज़रीन, आप लोग ताज़ा दम होके आ गए हैं दोबारा तहरान स्टूडियो में, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में, और वक्त हुआ है दोबारा से चलने का रुबाब की तरफ, ताकि रुबाब गुफ्तगू आगे चला सकें।
बहुत शुक्रिया खुर्रम, और जिस तरह नाज़रीन को पता है बुरी आदत छोड़ना, झूठ के बारे में हम बात करें, और फरहत साहिबा एक बहुत अक्सर चीज़ देखी गई है कि जो लोग होते हैं झूठ बोलते हैं, और फिर बोलते हैं यार हमने तो झूठ इसलिए बोला कि हम फलाने का घर बचा लें या ये कर लें, लेकिन दिल में नीयत झूठ की ही होती है, सिर्फ बहाना ये होता है कि हमने झूठ इसलिए बोला, हम किसी के लिए, किसी की अच्छाई के लिए बोला। उनके लिए आप क्या कहेंगे कि ये काम सही है या नहीं है?
जी देखिए, पहले मैं ये कहूँगी कि सब कुछ शुरू होती है नीयत से, आपकी नीयत कैसी है।
अच्छा,
सब कुछ, क्योंकि दिलों का मालिक सिर्फ खुदा है।
बिल्कुल,
आप जबान से तो बोल सकते हैं लेकिन दिल में क्या है आपके ये कोई नहीं जानता।
बिल्कुल,
अब ये कहना, मतलब ये जो आपने सवाल पूछा है, मसलहत यानी किसी का, किसी की ज़िंदगी बचाना, मैंने जी ये झूठ कहा इसलिए कि उसकी ज़िंदगी बच गई, उसकी जान बच गई, या उसका घर
टूटने से बच गया।
लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना ज़रूरी ये है कि वो झूठ तो बोल रहा है ना।
अच्छा,
तो झूठ तो है ऑलरेडी, वो वहीं पे है,
इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि झूठ ही है।
झूठ ही है, क्योंकि झूठ के जो होते हैं, ये कहावत है, झूठ की टांगे नहीं होती है।
सही,
वो बिल्कुल हमेशा गलत ही होता है।
अच्छा,
अब एक चीज़ है इसमें, इतनी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है कि हाँ किसी का बस दिल ना टूटे।
ठीक है,
क्या, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह जो है दुनिया में किसी का दिल टूटना है। क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब हम एक छोटा सा पत्थर दरिया में फेंकते हैं, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता होता ये कितनी गहराई तक जाता है।
बिल्कुल,
इसी तरह से किसी एक बात से किसी का दिल इतना टूट सकता है, वो हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी गहराई में टूटा है।
बिल्कुल,
अब आप किसी का दिल नहीं तोड़, किसी का दिल रखने के लिए या किसी को, किसी की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए झूठ कह रहे हो, तो वो अलग बात है, लेकिन झूठ तो अपनी जगह झूठ ही है।
सही,
उससे मैं कोई कमी या ज्यादती नहीं हो रही है।
बिल्कुल ठीक, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात की कि ठीक है मसलहत की बात ठीक है, लेकिन बात फिर वो याद आती है झूठ तो झूठ है। और फिर नाज़रीन, हमने पिछले प्रोग्राम में एक बात की थी और फरहत साहब हमने एक बात की थी कि ठीक है शायद हम वो झूठ उस वक्त बोल के उस बंदे को उस वक्त के लिए सुकून दे रहे हैं। ठीक है,
कहते हैं ना हक बात जो होती है हमेशा कड़वी होती है।
सही,
सच बात हमेशा कड़वी होती है, वो थोड़ी देर के लिए आपको, मतलब हमें बुरा लगेगा, हाँ जी फलानी ने ऐसे कहा या ऐसे किया, थोड़ी देर, फॉर टाइम बिंग, मतलब कुछ लम्हे के लिए, कुछ ही दिनों के लिए, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है,
ठीक है।
लेकिन झूठ जो है वो तो हमेशा के लिए वहीं पे रहेगा।
बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो सच का जो जख्म है वो वक्ती तौर पे हमको शायद बुरा लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो संभल जाता है। लेकिन झूठ कुछ इस तरह है, वक्ती तौर पे शायद हमें आराम कर ले या हमारे को किस तरह से एक सुकून दे दे, लेकिन वक्त के बाद चलते चलते फिर से वो झूठ झूठ बन के ही सामने आ जाता है। बहुत खूबसूरत बात की आपने फारा चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारा वक्त हुआ है खुर्रम के पास चलने का और खुर्रम की कुछ ताज़ी ताज़ी और नई खबरें सुनने का।
और एक बड़ी दिलचस्प किस्म की खबर मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। देखें, वैसे तो कहा जाता है कि माओं को अपना दूध बच्चों को पिलाना चाहिए और बहुत ये एक अहम नुक्ता है, लेकिन अगर आप नहीं पिला सकते तो कम से कम थोड़ा सा ये ख्याल रखें कि आप बच्चों को क्या पिला रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक मॉडल है जेरी ली के नाम से, अभी जो है ये न्यूज़, ये खबर जो है सारी अखबारों में जो है इंटरनेशनल न्यूज़ में पहुंच चुकी है, और इनका ख्याल यही था कि जो अपना दूध पिलाना जो है वो सही नहीं है, जो है मैं जो है जो बाहर बाहर से मिलने वाला दूध है वो अपने बच्चे को दूंगी। बहरहाल ये उनका बच्चा है जो 2 महीने का है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जब खातून वापस आ रही थी अपने काम से, तो वो गाड़ी में बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो है मैं एक बोतल वाला दूध जो है वो ले लेती हूँ अपने बच्चे के लिए, और वो जो है गाड़ी में आराम से पीते रहेगा। और जैसे अक्सर खवातीन ये करती हैं कि जी फीडर डाल दिए बच्चे के मुंह में ताकि बच्चा रोए ना और फलां, ये सारी चीज़ें। बहरहाल इन्होंने जो है वो फीडर उनके लिए ले लिया और वो दूध ले लिया और उसको फीडर में डाल लिया। बहरहाल बच्चा जो है वो दूध जब उसने पीना शुरू किया तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, और खैर उसके बाद जो है कहा जाता है कि 4 दिन तक ये बच्चा जो है बीमार रहा। बाद में खातून ने जब 4 दिन के बाद वो जब घर आई, उन्होंने जब देखा कि भाई मसला ऐसी, वो जो बोतल थी दूध की वो उनके कहीं हाथ लगी, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने उनको पता चला कि जो दूध उन्होंने ख़रीदा था वो 10 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। तो बहरहाल ये एक बड़ा जो है अजीबोगरीब किस्म का जो है हादसा था, और इसमें एक जो हमें नतीजा इससे मिलता है वो ये मिलता है कि अगर आप लोग अपना दूध जो है अपने बच्चों को नहीं पिला रहे तो कम से कम जो बाहर से दूध ले रहे हैं वो एक सही कंपनी का लिया जाए, साफ सुथरा लिया जाए, और चलो अच्छी कंपनी का भी नहीं होता तो एक्सपायर शुदा ना लिया जाए।
और खुर्रम आपने बहुत अच्छी बात, एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया। यहाँ ईरान में तो खैर ऐसा है कि आप जब कुछ चीज़ लेते हैं तो वो दुकानदार खुद आपको एक्सपायरी डेट दे के ही देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कानूनी लिहाज से थोड़ा सा सख्त किया गया है। लेकिन मुझे ये जहाँ मेरा पाकिस्तान में जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है बिल्कुल इस तरह नहीं है। बिस्किट्स होते हैं, चिप्स होते हैं, वो धूप में पड़े पड़े होते हैं, वो सनलाइट की रेज लग लग के असल वो पैकेट का रंग तो उड़ जाता है कुछ नहीं, तो वो काफ़ी असरात पड़ते हैं अंदर उस पर, और वो टाइम के लिहाज से एक्सपायर हो चुका होता है, वो ऐसे लोगों को दे रहे हैं और लोग खरीद के खा भी रहे हैं।
बिल्कुल, ये आपने जो है बड़े अच्छी तरह इशारा किया है कि एक तो खुद दुकानदारों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, दूसरा ये लोगों में ये
शूर
आदत
आना
चाहिए। बिल्कुल, ये आदत आनी चाहिए कि आप लोग जो है कोशिश करें कि हर चीज़ को एक्सपायरी डेट उसकी चेक करें। अलबत्ता यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है, और वो ये है कि आया वो जो एक्सपायरी लिखी गई है वो दुकानदार ने खुद लिखी है या कंपनी ने लिखी है, ये भी बहुत अहम सवाल है। पर यहाँ पर छोटा वक्फा लेंगे, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत हाजिर होंगे हमारे साथ। जी, अभी रिसेंटली जो ईरान की ट्रैफिक पुलिस है उसने एक कानून जो है मुतारिफ़ करवाया, और वो कानून ये था कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप कुछ पी नहीं सकते, और मोबाइल फ़ोन और सिगरेट नोशी का इस्तेमाल भी बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया गया है, और बड़े सख्त किस्म के और बहुत ज़्यादा जो है फ़ाइन जो है बड़े कैसे जी जुर्माने जो हो रहे हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के हो रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल और ये क्यों हो रहा है, ये कानून क्यों लाया गया है, इसकी वजूहत जो है थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा। बारह एक रिसर्च हुई 150 गाड़ियों पे जिनमें कैमरे लगाए गए, और देखा गया लोग जो है वो गाड़ी में क्या क्या करते हैं। तो उसमें एक जो बहुत बड़ी वजह बताई गई गाड़ियों के एक्सीडेंट की वो ये थी कि लोग जो है वो गाड़ी में बैठ के इस तरह चिप्स खा, पर इस तरह नहीं खाते ज़्यादातर लोग, ये है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से खाते हैं, लेकिन ये भाई साहब मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी
इनको, ठीक है
जी। तो बहरहाल एक जो सबसे बड़ी वजह खाना पीना गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट्स की वजूहत हैं, उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, तीसरी वजह कहा जाता है कि जब आप गाड़ी का हीटर या एसी ऑन और ऑफ़ कर रहे होते हैं वो है, और उसके बाद की वजह जो बताई गई है वो ये बताई गई है जब आप टेप की या जो रेडियो है उसकी आवाज़ को ऊपर नीचे कर रहे हैं वो है, उसके बाद आप जो आपके मिरर जो आईने लगे होते हैं साइडों पे उनको जब एडजस्ट कर रहे होते हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट। और एक जो बड़ी दिलचस्प बात है इसके बाद का नंबर जो है वो है सीट बेल्ट का, कि अक्सर लोग जो है देखें होना यूँ चाहिए कि जब आप गाड़ी में बैठे तो उसी वक्त सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये करते हैं कि गाड़ी में बैठे गाड़ी जब चल पड़ी है तो उसके बाद सीट पे एक हाथ से।
अच्छा खुरम, चल पड़ने की बात नहीं है, बात ये है कि उनको पता होता है कि अगले स्पॉट पे वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है,
ठीक है,
तो वो जुर्माना होने वाला, तो वो उस स्पॉट पे पहले से फौरन बांधना शुरू करते हैं।
ये तो चलो उन लोगों के बारे में ना जो रुबाब असं इस्तेमाल नहीं करते सीट पर, पुलिस को देखा तो लगा ली,
बिल्कुल
ये तो एक अलग। लेकिन एक और जो दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि भाई आपको पता है आपने लगानी नहीं, जब गाड़ी चल पड़ेगी एक हाथ स्टेयरिंग पे दूसरे हाथ से सीट
बेल्ट
एक्सीडेंट होने का। और ये जो आपने जिन लोगों के बारे में बताया कि जो पुलिस को देख के सीट बेल्ट लगाते हैं या जो स्पीड कैमरा देख के एकदम से स्पीड कम कर देते हैं, ये तो बस
इसलिए एक्सीडेंट के मेरे ख्याल से और भी अहम नुकात की तरफ चला जाता है, जो आप अचानक ब्रेक लगा देना पीछे वाली गाड़ी स्पीड में करा रही
हो, बहुत ज्यादा हादसा जो है इसी वजह से होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि शीशा ऊपर नीचे करते हुए एक्सीडेंट्स होते हैं। अब ये शीशा ऊपर नीचे करते हुए मुझे नहीं ज्यादा समझ आई वैसे, क्योंकि शीशा जब आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो अगर ऑटोमेटिक है तो वो तो बटन से हो रहा है,
जिनके पास नहीं हो ऑटोमेटिक में ख्याल से वो जो घुमाने के ही उसमें
वो घूमते हुए उसको देखते हैं। बहरहाल चलें, हमारे डायरेक्टर साहब कह रही है कि जो बात बहुत ज्यादा आपने बात कर ली है तो यहाँ पर जो है हम लोग चलेंगे। बारह सर मैं ये बता चल हूँ कि कहते हैं कि लोग जो फोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं 7 से 8 बार एक दिन में एक्सीडेंट से बच जाते हैं, हादसों से या बिल्कुल नजदीक से बच जाते। जो लोग SMS कर रहे होते हैं वो 4 बार और जो लोग खा रहे होते हैं वो तकरीबन 8 बार एक्सीडेंट से बचते हैं। तो बहरहाल ये जो है उसकी मैंने कहा ये भी बताता चलें नाज़रीन को, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। चलते हैं दोबारा रुबाब की तरफ।
बहुत शुक्रिया खुरम और फरहत साहिबा। नाज़रीन के लिए एक पैगाम, जो हमारे नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप क्या पैगाम देंगे इनको कि किस तरह इस आदत से बचा जाए?
जी मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगी कि कोशिश करें कि झूठ ना बोलें, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, कि उनके दिल में एक तरह से खुदा का डर बैठाया जाए, यानी उनके दिलों में एक खुदा की याद पैदा की कराई जाए कि कभी आप झूठ नहीं कहना, मतलब अगर आप झूठ बोलेंगे तो अल्लाह में आप से नाराज़ हो जाएंगे, खुदा आपसे नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। और मतलब इस तरह से बच्चों के लिए कहा जा सकता है, और बड़ों के लिए ये है कि अगर एक बार झूठ की आदत हो गई तो हो गई।
सही,
मैंने आपसे बताया ये एक बीमारी है,
ठीक,
तो कोशिश यही होनी चाहिए कि झूठ नहीं कहें।
सही,
तो इसी के साथ
ही जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू रही और बहुत अहम नुकात की तरफ आपने इशारा किया, बहुत शुक्रिया आपने तशरीफ लाई। जी खुरम
जी बहुत शुक्रिया, मैं भी आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने नाज़रीन की खिदमत में जो है इतनी मुफीद गुफ्तगू पेश की। यहाँ पर हम लोग लेंगे छोटा सा खूबसूरत सा वक्फा, उसके बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं हम लोग, और मैं चलूंगा इस तरफ रुबाब की तरफ, और हमारे साथ हमें बताया जा रहा है कि हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे एक कॉलर मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही उनसे हमारा राबता हो जाता है तो उसके उनसे जो है इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। और बहरहाल मुख्तलिफ यहाँ पर आपने बातें की रुबाब, हमारा जो हफ्ते का मौजू है उसके सिलसिले में, और बहुत सी चीज़ें हैं इन पर इस पर बात की जा सकती है, लेकिन जो है हमें बताया गया कि हमारा राबता जो है हो गया है। और हमारे साथ अजहर अली साहब सऊदी अरेबिया से हमारे साथ हमें वो ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। सलाम अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके?
बहुत बहुत शुक्रिया, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं?
हाँ बहुत शुक्र है अल्लाह का। हम सऊदीया में 3 लड़के एक कमरे में रहते हैं और आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं,
खासकर
आपकी न्यूज जो है वो बहुत अच्छी लगती है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
अच्छा सऊदी अरबी में अभी मौसम कैसा है? तेहरान में तो बहुत ठंड पड़ रही है।
हाँ नहीं, हम जद्दा में रह रहे हैं तो इधर इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन नॉर्मल मौसम है।
सही, बहुत अच्छा। तो आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे?
मैं यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि हफ्ते का मौजू हमारा ये चल रहा है कि झूठ के बारे में, बुरी आदत से बचने के बारे में, तो आप क्या सोचते हैं किस तरह बचा जाए इस आदत से?
हाँ झूठ से हम बच सकते हैं अगर हम ये कोशिश करें कि जो करें वही बताएं, मतलब ये कि कोशिश करें कि वो अच्छे काम करें, अच्छे काम करने से हम झूठ से बच सकते हैं।
बिल्कुल,
क्योंकि लोग बंदा झूठ तब बोलता है जब वो बुरा काम करता है और वो बताना नहीं चाहता।
सही,
तो इसलिए मेरे ख्याल में ये है कि अगर बंदा काम ही वो करे जो बंदा आराम से बसा सकता हो, तो फिर वो झूठ से बच सकता है।
अच्छा अजहर साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की, ऐसा ही है, बिल्कुल ही ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद ये काम किया जाता, क्या अल्लाह ताला का खौफ नहीं है, ईमान की कमी है, या ये हमने ये समझ लिया कि शायद झूठ गुनाह ही नहीं है?
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर अल्लाह से खौफ होगा तो हम ये गुनाहों से बच सकते हैं।
ठीक।
और झूठ ऐसा गुनाह है कि जिससे हम बहुत से दूसरे गुनाहों से भी बच सकते हैं, अगर झूठ से बचेंगे तो बाकी दूसरे गुनाहों से भी हम बच सकते हैं।
अच्छा अजहर साहब, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, वो ये है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि झूठ जो है वो एक बड़ा छोटा सा हल्का फुल्का सा गुनाह है और जो है ज्यादा मसला नहीं है, ऐसा ही है क्या आपके ख्याल में?
ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये बोलते बोलते बंदा ये सोचते ही नहीं है कि ये कोई हम गुनाह कर रहे हैं।
ठीक
कह रहे हैं, रूटीन की बात है।
हाँ, रूटीन की बात, लेकिन जैसे कि हमारे आयमा कराम ने भी कहा है कि छोटे गुनाह जो है बड़े गुनाहों का बाइस बनते हैं, तो मेरे ख्याल में जो है यहीं से सारी बुराइयां शुरू हो जाती हैं।
यही असल में बुराइयों की स्टार्ट यही है।
बिल्कुल, तो आपके ख्याल में क्या किया जाए, इंसान अगर एक रूटीन में एक इंसान जो है वो झूठ बोलने की उसे आदत है,
तो फरहत साहिबा ने कहा खून में ही शामिल हो जाता है इंसान,
बिल्कुल आदत हो जाती है, तो कैसे छुटकारा पाया जाए?
यही है मेरे ख्याल में कि बंदा को थोड़ा सा ना ये करना चाहिए कि वो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे और अच्छे काम करे। यानी जो बंदा तब बोलता है जब वो ये सोचता है कि ये मैं काम कर रहा हूँ और ये दूसरों को बताना चले।
सही, अजहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, स्काइप के जरिए आपसे रब्ता करना था लेकिन नहीं हो सका, इंशाल्लाह जो है कोशिश करेंगे कि आपसे रब्ता किया जाए ताकि जो है आपकी तस्वीर भी हम देख सकें, आपकी वीडियो भी देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ये मेरा पहला फोन है, इंशाल्लाह मैं फिर भी रब्ता करूंगा,
इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
और इन्होंने एक बहुत अच्छी तरह इशारा किया कि इंसान अगर अपनी ज़िंदगी को इस्लामी जरिए से गुजार सके,
सही,
तो मेरे ख्याल से कि ये बात इनकी बहुत अहम थी, और बहुत चूँकि फारत ने भी इस तरफ बहुत इशारा किया कि मतलब काफ़ी बुराइयों से बच सकते हैं।
बिल्कुल, अगर ये रविश हो जाए, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी और इंसानियत में कोई फ़र्क ही नहीं है, और इंसानियत का तकाजा यही है कि आप दूसरे बंदे को बेवकूफ़ झूठ बोल के बेवकूफ़ मत बनाए, और जब आप दूसरे बंदे को झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाते हैं तो आप मेरे ख्याल में वो शख्स इंसानियत के दायरे से बाहर हो जाता है, और जो शख्स इंसानियत के दायरे से बाहर हो गया है वो दीन इस्लाम के दायरे से भी हकीकतन बाहर हो जाता है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये यादावरी करना बहुत ज़रूरी है हमें कि झूठ पहले तो कोई छोटा गुनाह नहीं है, दूसरा ये है कि ये कह देना कि एक बार झूठ बोला दो बार झूठ बोला ये भी गलत है, आपको आदत पड़ जाती है इन चीज़ों की, तो कोशिश करें इन चीज़ों की आदत से बचें, पहली बार ही इनसे दूर रहें।
अब
बहरहाल नाज़रीन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए मुझे और रुबाब को प्रोग्राम सुबह जिंदगी से इजाज़त दीजिए,
खुदा हाफिज़।